Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, this is Ganga, Adhyay 5, Shlok Sankhya 17 se lekar 25 tak padhne ka prayas karenge. Is aadhyatmik jagat mein pravesh karne se pehle, Guru Arghananda se kripa ki yachna karte hue mangala charan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain, उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तत्थाम वृंदावन रम्याचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणमम चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीतांबर दरुण बिंब फल दरोष्टा अरविंद निद्रा किमपि तत्व करारविंदे न परारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेष्यानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्दहरे मुरारि हे नाथ नारायणवासुदेव जिहवे विवस्व ऋतुमेत देव गोविंद दामो धर्मादवेति बर्हावीणम् नटवरवपोकर्णियो कर्णिकारम् बिभ्राद्वास कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यम् रन्ध्रार्वेणुम् अधरसुधया पूर्णयोगोपवृत्ते वृन्दारण्यम् स्वपदकमलं प्राविश कीर्तकीर्ति अहो वकीयम् स्तनकालकूटम् जिह्वासयापा ययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्विचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद पांचवा अध्याय जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। हम इस अध्याय के 16 श्लोक जिसमें विदुर जी भिन्न भिन्न रीति से भगवान के नाम गुण लीलाओं के विषय में प्रश्न करते हैं उनको श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 17 में सुखदेव गोस्वामी विदुर जी के इन प्रश्नों को श्रवण करके कितना आनंदित हुए हैं और विदुर जी को धन्यवाद कहते हैं कि आपने कितने सुंदर प्रश्न पूछे हैं। याद रखिए भक्तों, जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए कि हमको हर एक चीज समझ में ना आए तो पूछना चाहिए, परंतु किस तरह से प्रश्न करने चाहिए, कैसे प्रश्न हो जिनका संबंध डायरेक्ट से भगवान से हो, जिसके संबंध में भगवान के विषय में अधिक श्रवण करके हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि भगवान में आकर्षित हो सके। तो अत्यंत ही सुंदर प्रश्न विदुर जी के थे जिनको सुनकर आज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। श्री शुक उवाच स एव भगवान् पृष्ट क्षत्राकौशारवो मुनि पुंसाम्नि श्रेयसाथेन तमाह बहुमापन स एवं भगवान् पृष्ट क्षत्राकौशारवो मुनि पुंसाम्नि श्रेयसाथेन तमाह बहुमानयन् शब्दात् श्री शुक उवाच अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा स एवं सामन वह एवं मतलब इस प्रकार कौन भगवान यानी महर्षि पृष्ट अर्थात पूछे जाने पर क्षत्रा कौशारवो मुनि क्षत्रा अर्थात विदुर जी कौशारवो अर्थात मैत्रेय मुनि मुनि मतलब महर्षि पुंसाम निश्रेष पुंसाम का मतलब होता है सारे लोगों के लिए निश्रेयस का मतलब होता है महानतम कल्याण अर्थे यानी उस महानतम कल्याण के लिए तम उसको आह वर्णन किया बहुमानयन बहुमन बहुत ज्यादा अत्यधिक मानयन मतलब सम्मान करते हुए। अनुवाद देखिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे विदुर सुखदेव गोस्वामी ने कहा विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महर्षि मैत्र मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है स एवं भगवान पृष्ठ तो महर्षि क्या भगवान है जो सुखदेव गोस्वामी उनको भगवान कह रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे, अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्तिमय सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पुंसाम नि श्रेय सार्थे कि भगवान जो यानी भगवान यानी बहुत ही महान है वो, और साधारण मनुष्य जैसे नहीं है, वो बहुत महान है, सबका कल्याण करने वाले हैं। और पुंसाम नि श्रेय सार्थे समस्त लोगों के कल्याण के लिए तमाह बहुमानयन बहुत बहुत सत्कार किया मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का। उसके उपरांत उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। आगे मैत्रेय मुनि ने क्या वर्णन किया वो बता। मैत्रेय उवाच
साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साधु नो गृह्णता कीर्तिं वितन् वदा लोके आत्मनो दुःखजात्मनः साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साधु नु गृह्णता कीर्तिं वितन् वदा लोके आत्मनो दुःखजात्मनः। शब्दात् मैत्रेय उवाच यानी मैत्रेय मुनि ने कहा साधु पृष्टम, साधु मतलब सर्व मंगलमय, और पृष्ठम मतलब जो प्रश्न पूछे गए, त्वया आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा। साधो हे भद्रे, एक तो आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो कल्याणमय है, और आप स्वयं भी समस्त जीवों के लिए साधु लोकान यानी सारे लोगों के लिए आप स्वयं भी कल्याणकारी हो। साधु अनुग्रहता यानी अच्छाई में दया का प्रदर्शन, साधु है और उसके साथ साथ अनुग्रह करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। कीर्ति वितनवता लोके, कीर्ति मतलब कीर्ति, वितनवता प्रसार करते हुए, लोके यानी संसार में, आत्मनः आत्मा का, अदुक्षजः अर्थात ब्रह्म का, आत्मनः अर्थात मन। अनुवाद देखिए, श्री मैत्रेय ने कहा हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है, इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तो यहाँ से जो बात मुख्य है वो समझने की क्या है कि जो भगवान के विचार में लगा रहता है उसकी हमेशा एक ही इच्छा होती है कि जीवों का कल्याण कैसे हो, है ना। इसीलिए विदुर जी ने जो प्रश्न पूछा था संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शन, मतलब इसी से जीवों का कल्याण होगा जब वो श्रवण करेंगे। और मैत्रेय मुनि बोलते इसी से मेरा भी कल्याण होगा जब मैं भगवान के विषय में बोलूंगा। तो वास्तव में साधु वस्तु यदि कोई है, मंगलमय कोई है, तो भगवान की चर्चा है। श्रील प्रभुपाद की।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। आत्मनो दुःखजात्मनः कि मन जो है वो भगवान के अंदर। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभूति की सीमाओं को लांग जाता है। अक्ष कहते हैं इंद्रिय को, अक्ष आंख को भी बोलते हैं, लेकिन अक्ष का मतलब होता है इंद्रिय, और अधोक्षज का मतलब है जो इंद्रियों की अनुभूति या इंद्रियों के अनुभव की सीमाओं से को लांग जाता है। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, इन इंद्रियों के द्वारा न हम भगवान का नाम ले सकते हैं न भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं, परंतु ये भगवान की अनुकंपा है। सेवान मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव सुफूर्त्यदा, जब भगवान की जिह्वा के द्वारा सेवा की जाती है अर्थात जब भगवान का पवित्र नाम लिया जाता है तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो दिव्य हो जाती हैं, स्वयमेव सुफूर्त्यदा, और इन दिव्य इंद्रियों के द्वारा भगवत की भगवान साक्षात्कार किया जा सकता है। वैसे अधोक्षज हैं भगवान, हम अपनी इंद्रियों से उनका अनुभव नहीं कर सकते, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। चूंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद किया। आगे मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कहते हैं
कि विदुर, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, साक्षात वेद व्यास के पुत्र हो, इसलिए ये भगवान के अंदर जो तुम्हारा अनन्य भाव है वो तो निश्चित रूप से होने वाला, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे कहते हैं गृहीतो नन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर नैतच्चित्तं त्वैक्यक्त बादरायण वीर्यजे गृहीतो नन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। शब्दात्
नैतत् चित्रम त्वैक्ष, नैतत् चित्रम अर्थात ना मना कभी नहीं, एतत् मना ऐसे प्रश्न, चित्रम अर्थात आश्चर्यजनक, ये आश्चर्य नहीं है कि आपने इस तरह के सुंदर प्रश्न पूछे। क्यों? त्वयि यानी तुम में, क्षत्त हे विदुर जी, विदुर जी का क्षत्त नाम है, और बादरायण वीर्य जी, आप कहाँ से उत्पन्न हुए हो? बादरायण अर्थात व्यास देव के, वीर्यज अर्थात वीर्य से उत्पन्न हुए हो, क्योंकि विदुर जी जो है वो इस भौतिक जगत में कहाँ किस उनके पिताजी कौन है? जैसा कि आप सब जानते हैं भीष्म पितामह जब अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों रानियों को लेकर आए थे तो उसमें से अंबा तो शैलवराज से प्रेम करती थी तो उनको वापस भेज दिया था, और अंबा और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ जो सत्यवती के जो पुत्र थे उनके साथ विवाह हुआ था। विचित्र वीर्य की दो पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, परंतु विचित्र वीर्य का देहांत हो गया, जल्दी से उनकी मृत्यु हो गई, परंतु हस्तिनापुर को अब तक कोई युवराज प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए पहले ऐसा होता था, कलयुग से पहले ऐसा होता था कि यदि मतलब कोई भाई का देहांत हो जाता था तो देवर के द्वारा संतान उत्पत्ति की कराई जाती थी ताकि उनके कुल को एक पुत्र संतान प्राप्त हो सके। लेकिन जिस तरह से कलयुग प्रारंभ हुआ तो कुछ जो वेदों में बातें लिखी हुई हैं उसमें से मना कर दी गई कि क्योंकि कलयुग में जीवों का हृदय पवित्र नहीं है ना, तो वासना के कारण वो पवित्र भाव से कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए देवर के द्वारा संतान उत्पन्न करना यज्ञ में पशु बलि देना और संन्यास आश्रम ग्रहण करना, ये सब वेदों में लिखी हुई है, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए कलयुग में ये सब चीज़ें मना है। तो उस समय तो ये अभी तक मना नहीं थी ना, तो अंबिका और अंबालिका के संतान उत्पत्ति के लिए वेद व्यास जी को बुलाया गया, जो कि सत्यवती के ही पहले पुत्र थे, यानी उनके देवर थे ना, पराशर मुनि के पुत्र थे और सत्यवती के पहले पुत्र थे। वेद व्यास जी को जब बुलाया गया तो अम्बा और अंबिका से धृतराष्ट्र और पांडव जी का जन्म हुआ। लेकिन क्योंकि जब अंबिका और अंबालिका अंबिका के पास जब वो आए तो वो वेद व्यास जी को देख ना सकी और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए, क्योंकि वेद व्यास जी बहुत समय तक तपस्या कर रहे थे ना, तो इतने उनका शरीर का स्वरूप जो है वो बहुत ही भयानक जैसा था, क्योंकि वो दाढ़ी बड़ी हुई थी, जटाएं बड़ी हुई थी शरीर पे भी, क्योंकि उन्होंने कभी वो सैलून में नहीं गए थे, तो इतना वो अजीब सा उनका शरीर था, जिसको देखकर भयभीत होकर अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब उनको जो पुत्र हुआ वो नेत्रहीन हुआ, और जो अंबालिका है उन्होंने जब देखा वेद व्यास जी को, तो उनको पहले ही बोला था भाई आप नेत्र बंद नहीं करना, तो वो भयभीत हो गई और पूरी पीली हो गई भय के कारण। इसलिए पांडव जो थे वो भी मतलब इतने स्वस्थ नहीं थे, रोगी उनका शरीर था और उनकी भी इसलिए जल्दी मृत्यु हो गई। और उसके उपरांत इन दोनों की एक दासी थी। पहले क्या होता था, जब राजकुमारियों के साथ विवाह होता था तो उनके साथ बहुत सारी दासियां भी आती थी, जो फिर उस दासी को जब वेद व्यास जी के समक्ष लेकर जाया गया तो उस दासी के द्वारा विदुर जी का जन्म हुआ। तो वास्तव में ये सब काम वासना का खेल नहीं है, क्योंकि उन ये जो इतिहास रचा जा चुका है विदुर जी को, क्योंकि विदुर जी कौन थे, वो यमराज थे, उनका मंडूक ऋषि का जो श्राप था उसके कारण उनको आना था, तो उनको एक जननी, उनको एक जनक, एक वीर्य के लिए एक उपयुक्त जीव की आशा होती है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, कितने सारे जो है आध्यात्मिक जगत में ऐसी आत्माएं हैं जो कि भौतिक जगत में आना चाहती हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो ब्रह्म में जो लीन होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार में लीन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की इच्छा होती है, ऐसी जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हम भौतिक जगत में आए और जीवों का कल्याण करें, परंतु आज उनको ऐसे पिता का वीर्य प्राप्त नहीं होता, ऐसी माता की कोख प्राप्त नहीं होती, इसलिए वो नहीं आते। आज हमें अगर हम सब देखें, कितने हम अगर पूछें कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी संतान जो है वो ब्रह्मचारी बन जाए, वो हमें छोड़कर चली जाए और भगवान की सेवा में लीन हो जाए। शायद ही कोई माता पिता ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि हमारी संतान जो है वो ब्रह्मचारी बन जाए भगवान की। हमें दूसरों का बेटा साधु बनता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन हमारा बेटा क्या करना चाहिए, वो घर गृहस्थी को संभालना चाहिए, उसको तो हमारे साथ घर में रहना चाहिए, उसको तो विवाह करना चाहिए, उसको तो अपने ये सारी धन कमाना चाहिए, बहुत बहुत एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। तो ऐसा ही है, आज कोई नहीं चाहता कि हमारे घर पे कोई संत महात्मा का जन्म हो, हर कोई चाहता है कि कोई लग्जरियस लाइफ हो जो कि बहुत सारे धन कमाए। तो जो ऐसी आत्माएं हैं जो कल्याण करने के लिए आना चाहती हैं, उनको कोई ऐसी कोख नहीं मिलती, ऐसी माता नहीं मिलती, ऐसी ऐसे पिता का वीर्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि आपने यदि ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो हे विदुर, आपने जो आपका जन्म जो है वो किससे हुआ है, बादरायण वीर्य जी, आपका जन्म बादरायणी व्यासदेव के वीर्य से हुआ है, इसलिए गृहीतो नन्य भावेन, गृहीतो अर्थात स्वीकृत, अनन्य भावेन विचार से हटे बिना यत्वया हरिरीश्वर, यत मना क्योंकि, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, हरि यानी भगवान, ईश्वर यानी भगवान, हरि मना कृष्ण, ईश्वर मना भगवान, क्योंकि आप सदैव भगवान के विचारों में लगे रहते हो, तो इस तरह से तुम्हारा मन जो है अनन्य, गृही तो नन्य भावेन, अनन्य भाव से तुम भगवान से जुड़े हुए हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने बादरायण यानी व्यास देव के वीर्य से जन्म लिया है। अनुवाद देखिए।
हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हुए हो।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव नहीं थे, अतएव उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक बात समझने की है, आज जो आजकल गर्भधान संस्कार को कोई महत्व नहीं दिया जाता, आजकल केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, बाकी हमारा वैदिक जो वैदिक उसमें लिटरेचर में ये बताया गया है कि ये जो क्रिया है गर्भदान संस्कार, जब पिता के वीर्य को माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है, ये तो इतनी पवित्र क्रिया है, ये महान विज्ञान है, और इसके द्वारा जीव भगवान की सहायता करता है, क्योंकि भगवान की इच्छा है ना इस सृष्टि में जीवों को भेजने का, इस सृष्टि में जीवों को जन्म देने का, स्पेशली मनुष्य जीवन उसको प्रदान करने के लिए भगवान की इच्छा होती है कि जीव मनुष्य का जन्म प्राप्त करके, भगवत भक्ति करके पुनः मेरे पास आए। ये कार्य, उत्पत्ति का कार्य, मनुष्य को मनुष्य का जन्म देने का कार्य भगवान की ड्यूटी है, और मनुष्य जो पिता होता है भगवान के इस कार्य में सहायता करता है। तो ये कितना महान कार्य है, एक जीव आत्मा जो कि अनादिकाल से भटक रही है उसको गर्भ में स्थापित करके मनुष्य के देह प्रदान करना, इससे बड़ा उपकार कोई कर सकता है? इसीलिए बोलते हैं ना, माता और पिता जो हैं वो हमारे प्रथम गुरु हैं, मात्र देवो भव, माता और पिता देवताओं से भी महान होते हैं, क्योंकि वो हमें इस संसार में ये जीवन प्रदान करने के लिए माध्यम बनते हैं। इसलिए गर्भधान संस्कार किया जाता है, और उसमें बहुत ही पवित्र हृदय के साथ नाम जप किया जाता है, ताकि कोई शुद्ध आत्मा जो है वो हमारे घर में प्रवेश करे, जो कि ना स्वयं का कल्याण करे, हमारी भी सारी पीढ़ियों का और संसार का कल्याण करे। तो यहाँ बता रहे श्रील प्रभुपाद जी, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं है, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन खराब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अभी मूल समस्या क्या है कि अब ऐसी संतान उत्पन्न नहीं हो रही। कैसी? विदुर जी, मैत्रेय मुनि, वेद व्यास जी, ऐसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। तथाकथित जन्म नियंत्रण यानी संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरार्थक है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल फैमिली प्लानिंग की जाती है ना, जनसंख्या निरोध जो की जाती है उसका कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि वो दूषित है। वो पुरुष के वीर्य का दुरुपयोग है और माता के कोख का दुरुपयोग है, क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है कि वो जनसंख्या को तो रोकते हैं परंतु केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग करते हैं। लेकिन असल में क्या है, अगर पवित्र संतान उत्पन्न होती है प्योरिटी के साथ, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए ही गर्भदान संस्कार कराया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे वास्तव में बहुत ही पवित्र संतान उत्पन्न होती है जिससे हमारे पूरे कुल का कल्याण होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे, समस्त सावधानियों यानी कि किस तरह से गर्भदान संस्कार करना है, कैसे अपने बच्चों का को किस तरह से पालन करना है, किस तरह से उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी है, यदि ये सब मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो फिर फैमिली प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को उनके पहले जन्म के विषय में बता रहे हैं कि इस बार तो आपने वेद व्यास जी के वीर्य से जन्म लिया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था?
जातः सत्यवती सुधा मांडव्यशापात् भगवान् प्रजा संयमनोयमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यामः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायाम् जातः सत्यवती सुधा। मांडव्य का मतलब है मांडव नामक ऋषि, शापात उनके शाप से भगवान, अत्यंत शक्तिशाली, प्रजा संयम, प्रजा यानी जन्म लेने वाला, संयमना मृत्यु के नियंत्र, यम अर्थात यमराज नाम के से विख्यात, ब्रातु क्षेत्रे भुजिष्याम, ब्रातु यानी भाई की, क्षेत्र यानी पत्नी में, भुजिष्यायाम यानी रखेल, जातः उत्पन्न। सत्यवती सुता, सत्यवती यानी विचित्र वीर्य तथा व्यासदेव की माता, सुतात पुत्र व्यासदेव, अनुवाद मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए। श्री प्रभुपाद की जय।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे, देखें भागवतम 131। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मांडव्य मुनि के पास कुछ जो चोर जो थे वो राजा से कुछ धन, राजा के यहाँ से धन चोरी करके मांडव्य मुनि के आश्रम में छुप गए थे। और जब राजा के पहरेदार, राजा के जो सिपाही थे, उन्होंने आकर देखा तो मांडव्य मुनि के ऋषि के जो आश्रम में छुपे हुए थे, तो उन्होंने सोचा शायद ये मांडव्य मुनि भी इन्हीं के साथ है और वो तपस्या का, ध्यान में बैठे हुए थे ना, तो ध्यान का शायद ढोंग कर रहे। तो सिपाही जो थे वो उन चोरों के साथ साथ मांडव्य मुनि को भी लेके गए, और जब लेके गए तो उन सबको एक साथ सूली पे लटका दिया। और दूसरे दिन, दो तीन दिन के बाद जब वो वापस आए तो चोर तो सारे मर गए थे, परंतु जो मांडव्य मुनि थे वो सूली पर लटके हुए थे इतने दिनों से, लेकिन फिर भी वो वहीं पर जीवित थे। और जब देखा उन्होंने तो सिपाही बहुत भयभीत हो गए कि इतने दिन से ना खाया ना पिया और लटके हुए सूली पे, फिर भी मर नहीं रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, तो बहुत भयभीत होकर राजा को बोला, लगता है कि ये साधु जो थे वो बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमने इनको पहचाना नहीं और हमने इनको सूली पे चढ़ा दिया। तो राजा ने आकर उनसे क्षमा मांगी और उनको सूली से नीचे उतारा। परंतु मांडव्य मुनि ने बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे यमराज के पास जाना। और वो सशरीर इतने महान थे और सशरीर जो है वो यमराज के पास गए और यमराज से पूछा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मुझे इतना भयंकर दंड मिला? मैं भगवान की तपस्या कर रहा था और इतने भयंकर सूली पर मुझे लटका दिया गया, इतने दिन तक मैं इतने कष्ट को भोग रहा था, मैंने तो उस सूली पर लटके अपने बहुत सारे हजारों जन्मों को देख लिया, मैंने उनमें कोई भी अपराध नहीं किया। तो फिर यमराज ने बोला कि बहुत बहुत जन्म पहले, शायद ना अभी क्वांटिटी याद नहीं, बोला इतने सारे जन्म पहले आपने क्या किया था, एक जब आप 5 साल के बच्चे थे तो आपने एक छोटे से क्षुद्र चींटी को मारा था और उसके ऊपर है ना सुंडी जो होती है, सुंडी के ऊपर तिनके से उसको मारा था, उसके अंदर तिनके लगा रहे थे और इतने सारे, इसके कारण जो है वो आपको ये दंड मिला। तो मांडव्य मुनि ने बोला, मैं तो कितना छोटा था और 5 साल तक के जो भी अपराध बालक करता है उसको समझ नहीं होती है, तो उसको इतना दंड नहीं मिलता, और आपने मैंने इतने सारे जन्मों में तपस्या की उस के विषय में नहीं सोचा, और इतने सारे जन्म पहले मैंने एक कीड़े को मारा था उसके लिए आपने इतना सोचा, और आपने ना मुझे इतना बड़ा दुख दिया, अब मैं आपको श्राप देता हूँ क्योंकि आप तो शुद्र की तरह कार्य कर रहे हो, आप जैसे क्षुद्र बुद्धि वाले व्यक्ति को यमराज की पोस्ट पर बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो न्याय करना आता नहीं है, तो फिर वो कैसे यमराज बनेगा। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि संसार में जाकर क्षुद्र के घर पे आपका जन्म हो। तो यहाँ से एक प्रश्न तो उठता है कि यदि यमराज जी को भी श्राप लगना लगे, यमराज जी को अगर श्राप लगना शुरू हो जाए, फिर तो बेचारा कभी भी यमपुरी में जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि किसी के छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, किसी के पुत्र की मृत्यु हो, तो सब लोग तो श्राप देना शुरू कर देना। असल में बात ये थी कि क्योंकि यमराज जी भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, हम जो 12 महाजनों का नाम लेते हैं, स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म वैयासखी यम, तो यम जो है वो भी 12 महाजनों में एक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यमराज जी सदैव नरक में जो प्राणी अपराध करते हैं उनकी उनको ना नरक में डालने का कार्य करते हैं या दुख देने का कार्य करते हैं। अब यमराज को यही प्राणियों के प्रति जो कार्य है उनको करने का काम सौंपा गया, क्योंकि ये भगवान के बहुत ही विश्वसनीय शुद्ध भक्त हैं। लेकिन वो कार्य करते 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 यमराज जी बहुत थक जाते हैं और बोलते भगवान से कि कभी तो मुझे भी अवसर प्रदान करो कि मैं भी आपकी लीलाओं को देखूं। कभी तुम मुझे भी अवसर प्रदान करो कि मैं भी आपके भक्तों के साथ बैठकर भागवत कथा श्रवण करूं। मैं हर समय बस यूं ही अपराधियों को दंड देता रहूंगा क्या? मुझे कभी भी भगवान तुम्हारी कथा श्रवण करने का, भक्तों का संग करने का, नाम संकीर्तन का कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। और भक्त जब कोई प्रार्थना करता है तो भगवान जो है ना वो ईगरली उसको पूरा करने की, भगवान की इच्छा होती है उसको पूरा करना। भक्त तो बस सोच लेता है ऐसा होना चाहिए, बाकी कैसे होगा और किस तरह से करना वो सारी योजना भगवान स्वयं बनाते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि हमें भगवान की ये सेवा करनी है बस, बाकी वो किस तरह से करनी है, वो उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए धन अर्जित, उसके लिए सरकमटेंस, वो सारी की सारी ड्यूटी भगवान की, वो खड़ा खड़ा करेगा क्या? अब कभी सोचें कि आप ऐसे खड़े हो बांसुरी पकड़ के, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं हो तो कितना बोरिंग लगे। तो भगवान ऐसा नहीं कि वो खड़े ही रहते हैं, भगवान तो जब एक भक्त के मन में कोई इच्छा होती है ना, बस ये बांसुरी वो संकेत है, उसमें ऐसी फूंक मारते हैं कि कैसे भी करके उस भक्त की इच्छा पूरी करनी। तो विदुर जी की भी इच्छा थी ना कि मुझे भगवान की सेवा करनी। अब विदुर जी यमराज थे, यमराज भला कैसे अपनी ड्यूटीज को छोड़कर यहाँ भौतिक जगत में आएंगे, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे, भक्तों के मुख से भगवत कथा सुनेंगे, उनको तो श्राप मिलेगा तभी आएंगे। तो इसलिए मांडव्य मुनि के द्वारा भगवान की योजना से विदुर जी को, यमराज जी को श्राप मिला कि वो दासी का पुत्र बन के आएंगे, इसीलिए वो दासी का पुत्र बन कर आए। क्योंकि अगर वो अंबिका या अंबालिका में से किसी पुत्र उत्पन्न होते तो उनको ये अवसर प्राप्त थोड़ी होता कि भगवान दुर्योधन के 56 भोजन को त्याग कर विदुर जी के घर आकर केले के छिलके खाते हैं। तो ये तो भगवान की योजना होती है कि किस तरह से अपने भक्त के इच्छाओं को पूरा करना है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालता है। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशा है, जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। पहले जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, पोषण होता है और मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दिया गया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की रखेल के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि आज हम जहाँ पर भी जन्म लेते हैं ना, वो कब डिसाइड होता है? जब हमने पिछले जन्म में जो जो कार्य किए हैं उसी के अनुसार। आज हमको कभी कभी इच्छा होती है ना, यार मेरा भी जन्म है ना अमेरिका में हुआ होता, काश मैं वृंदावन में जन्म लिया होता, काश मेरे माता पिता है ना कोई फिल्म के हीरो होते, काश मैंने कोई है ना बहुत ही रिच परिवार में जन्म लिया होता, काश मैं बिल क्लिंटन के घर पे जन्म लिया होता, तो ये सब अपनी मर्जी से नहीं होता है। तो कभी कभी हम बोलते भी है ना कि भाई वो तो बिल गेट्स के घर पे जन्म लिया है इसीलिए वो बहुत धनी है, इसीलिए वो ये कार्य कर सका, इसीलिए, और हम लोग तो एक रक्षा वाले के घर पे पैदा हुए हैं, तो हम हमारे अंदर तो भगवान ने हमें पैदा ही यहाँ पर किया, तो मैं ये सब कार्य नहीं कर सकता। तो वो जॉन गेट्स अगर बिल गेट्स के घर पे जन्म लिया है तो उसने डेफिनेटली अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि उनको ऐसे समृद्ध माता पिता मिले। और हम अगर ऑटो वाले के घर पे पैदा हुए हैं तो फिर हमारे अपराधों के कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके कारण हमको ये माता पिता मिले। इसलिए हमको कभी भी अपने माता पिता को जो दोष नहीं देना चाहिए। अक्सर जो है ना बच्चों की ये इच्छा होती, काश वो मेरी माँ होती, ये वाली जो माँ है वो अच्छी नहीं है ये वाले पिता से, क्योंकि ये मेरी भी इच्छा पूरी नहीं करती, वो माँ कितनी अच्छी है, मैं भी उसका बच्चा होता। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता हमें में प्राप्त हुए हैं वो हमारे कर्मों के प्राप्त के अनुसार प्राप्त हुए। और अगर हम चाहते हैं कि हमको उससे भी बेटर माता पिता चाहिए, तो फिर हमको अपने माता पिता को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्मों को दोष देते हुए अब से अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, ताकि हम ऐसे घर में जन्म लें जैसा हमने चाहा। जैसे भगवान कहते हैं कि प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वाम शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते, कि अगर आप चाहते हो कि हमें अमीर घर में पैदा होना चाहते हो, पवित्र घरों में पैदा होना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, भगवान की भक्ति करो, और उसके उपरांत आपको धनी परिवार में या पवित्र घरों में जन्म मिलेगा। तो विदुर जी तो पिछले जन्म में यमराज थे, तो भगवान की आज्ञाओं का पालन करते करते उन्होंने भगवान की बहुत सेवा की, इसलिए उनको वेद व्यास के पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं,
भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत् भगवान् व्रजन्। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत् भगवान् व्रजन्।
भवान् भगवतो नित्यम्, भवान् का अर्थ है आप, भगवत अर्थात भगवान के, नित्यम यानी नित्य, सम्मतः अर्थात माम्य, स अनुगस्य अर्थात अनुगस्य का मतलब होता है संगी, जो भगवान के साथ रहते हैं उनमें से एक है, ह रहे हैं। यस्य ज्ञानोपदेशाय, यस्य मना जिसका ज्ञान अर्थात ज्ञान उपदेश उपदेश के लिए, माँ अर्थात मुझको आदेश अर्थात इस तरह आदिष्ट दिया गया, भगवान अर्थात भगवान ने व्रजन अर्थात व्रज धाम अपने व्रज गोकुल धाम में जाते समय। अनुवाद देखिए, आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। अब देखो ये कितना महान कार्य है कि मरने के बाद आपके आगे भाग्य का, जीवन का जो भाग्य होगा उसका निर्णय करने का अधिकार धर्मराज जी को है। तो ये कितना विश्वसनीय व्यक्ति भगवान चुनेंगे, क्योंकि अगर वो विश्वास पात्र नहीं होंगे तो वो तो किसी के साथ इतना जस्टिस ही नहीं कर पाएंगे और कुछ न कुछ तो ना गड़बड़ कर देंगे। लेकिन ये तो कोई पद स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो इसलिए कोई नहीं स्वीकार करता। लेकिन भगवान के नित्य संगियों के जो पार्षद हैं उनमें से एक यमराज जी हैं, उन्होंने कहा भगवान आपकी खुशी के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं, क्योंकि विदुर उनमें से एक थे। अतः वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ के गए थे। यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत भगवान व्रजे, व्रजे का भगवान वापस जा रहे थे। फिर बोला मेरा एक नित्य संगी, मेरा एक सखा, मेरा एक मित्र, मेरा एक शुद्ध भक्त यहाँ पर रुका हुआ है, उसके लिए मैं तुम्हें एक मैसेज दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, तो उनको देना। तो उपदेश छोड़ गए। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए आते हैं। अब वो क्यों आते हैं? वो कोई है ना पद स्वीकार करके कहीं का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आते, परंतु भगवान के आदेश को लेकर आते ताकि उससे क्या हो, जीवों का कल्याण हो सके, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। और इसीलिए प्रचार करने के लिए, भगवान के संदेश को प्रसार करने के लिए आते। ऐसे भक्ति प्रतिनिधि शक्ति आवेश अवतार कहलाते हैं, और वो भगवान की शक्ति आवेश अवतार, जैसे शिला प्रभुपाद जी इसको भौतिक जगत में कोई कार्य करने के लिए नहीं आए थे, परंतु भगवान के आदेश को फैलाने के लिए आए थे। प्रत्येक जगत में जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी त्याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, के पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं तो उन सब में भगवान का नाम जो है वो गूंजना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। अब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी आए। और आज हम देखते हैं संसार के जितने भी कंट्रीज हैं, अमेरिका, रूस, जापान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, चीन, रशिया, हर जगह पर भगवान के पवित्र नाम की गूंज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये सब भगवान की योजना है, इसीलिए वो अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने नित्य संगियों को भेजते हैं ताकि जीवों का कल्याण हो सके। आगे मैत्रेय मुनि बोलते हैं, तो भगवान ने आपके लिए आदेश दिया है, अब मैं क्या करूँगा? वे कहते हैं,
अतते भगवल्लीला योगमायोरुबृहिता विश्वस्थित्युत् भवन्तार्थो वर्णयाम यनुपूर्वशः अतते भगवल्लीला योगमायोरुबृहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थो विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम यनुपूर्वश। शब्दार्थ, अथ ते भगवल्लीला अथमना इसलिए, ते मना आपसे, भगवान यानी भगवान के विषय, लीला यानी लीलाएं, योग माया अर्थात भगवान की शक्ति, उरु अत्यधिक बृहिता यानी विस्तारित, विश्वस यानी विश्व विराट जगत, स्थिति यानी पालन, उद्धव सृजन, उद्भव का मतलब होता है सृजन और अंत का मतलब होता है संहार, विश्व की सृष्टि पालन तथा संहार, उसके विषय में अंत यानी संहार और आर्थो मतलब प्रयोजन, ये सब बातें। वर्णयामी वर्णन करूंगा, अनुपुरुष क्रमबद्ध रीति से यानी लाइन से आपको बताऊंगा कि किस तरह से सृष्टि होती है, किस तरह से पालन और किस तरह से संहार होता है। अनुवाद, अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के कर्म बंध सृजन भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं,
शक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। तो भगवान किस तरह से क्या करते हैं ये भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और वो किस तरह से अपने धाम में बैठे बैठे ये असंख्य सृष्टियों का निर्माण करते हैं, उनका पालन, एक भगवान के सामने जाकर कोई याचना करने की आवश्यकता नहीं। हम कैसे भगवान को बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स? भगवान चींटी के पद नूपुर बाजे तो भी वो सुनता है। ये जो चूंटियां होती है ना छोटी छोटी पहाड़ों के अंदर, कभी पत्थर होता है, पत्थर के अंदर कोई कीड़ा होता है, उसको भूख लगती है ना, तो भी भगवान को पता चलता है। हम मनुष्य होकर भयभीत होते हैं, हम मनुष्य होकर चीखते हैं चिल्लाते हैं और न्याय की भीख मांगते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है भगवान के सामने कंप्लेन करने की, भगवान के सामने तो जाकर ये बताना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में आपके प्रति कब प्रेम उत्पन्न होगा, मैं कब आपके लिए तड़पूंगा, क्यों संसार के लिए मुझे इतनी आसक्ति है, ये आसक्ति कब समाप्त होगी और आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम कब उत्पन्न होगा, इसी के लिए भगवान के पास जाना चाहिए। कब मुझे आपके शुद्ध वैष्णवों का दर्शन होगा जिनके केवल दर्शन मात्र से मेरे हृदय से भौतिक आकर्षण समाप्त होकर आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। बल्कि भौतिक संसार में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार है। भगवान को बोलो धन्यवाद जो आपने इतनी सरलता इतना सरल जो है मुझे जीवन दिया जिसमें मैं अपने इन अपराधों को भुगत सकता हूँ, क्योंकि भगवान किसी को उतना दुख नहीं देते जितना उसको भोगने की जिसमें क्षमता नहीं होती है, तकलीफ उतनी ही देते हैं जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये भगवान को ना खाली अनुकंपा करना आता है, ये जीव ना शुक्र है जो भगवान की किसी करुणा में करुणा के को दर्शन नहीं करता और हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता है। इतना कहने के उपरांत मैत्रेय मुनि, अब भगवान ने किस तरह से सृष्टि का निर्माण किया, पहले क्या था, उसके विषय में बोलना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं,
भगवान का आसेदम अग्रे आत्मात्मना विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। भगवानेक आसेदम् अग्रे आत्मात्मनां विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षण। शब्दात्
भगवान एक अर्थात भगवान मना भगवान, एक मना अद्वैय और कोई नहीं, अकेला एकमात्र भगवान। आस अर्थात था, इदम यानी यह सृष्टि, अग्रे मना सृष्टि के पूर्व, अब तक सृष्टि नहीं बनी थी ना, उससे पूर्व सिर्फ अकेले भगवान थे, एक साफ साफ लिखा है भगवान एक का आसेदम, सिर्फ एक ही भगवान थे। और आत्मानम विभु, आत्मानम मतलब अपने स्वरूप में, विभु का मतलब होता है स्वामी, सारे आत्मा यानी अपने स्वरूप में, आत्माना मतलब जीवों के, विभु मतलब स्वामी, सारे जीवों के स्वामी वही हैं। सृष्टि के प्रारंभ में या सृष्टि से पूर्व वो अकेले थे। और आत्मा इच्छा अनुगतो, इच्छा मना इच्छा से, अनुगतो मना लीन होकर, आत्मा नाना मति उपलक्षण, आत्मा मना स्वयं से, आत्मा से नाना मति यानी विभिन्न दृष्टि दृष्टियां, उपलक्षण मतलब लक्षण, कि फिर उन्होंने सारी वस्तुएं जो है उनका निर्माण किया अपने आप में से। कैसे किया अनुवाद देखिए,
समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैय रूप में विद्यमान थे, केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। एक बार सुने, समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैय रूप में विद्यमान थे, केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है।
श्रील प्रभुपाद जी कहते यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवतम के चार आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद या निर्विशेषवाद के अनुयायी कि श्रीमद् भागवत तक पेठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे इसके चार आदि श्लोकों की खींच तान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं, किंतु हमें मैत्रेय मुनि के द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन चार आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति में अहम एवासम एवाग्रे, मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है। भगवान ने कहा अहम यानी मैं, तो व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं कि अहम हर कोई बोले कि मैं, हर कोई व्यष्ट जीव नहीं। ये भगवान ने कहा अहम एवासम एवाग्रे के शुरू में सिर्फ मैं था, तो सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे। भगवान ने कहा अहम एवासम एवाग्रे यानी स्टार्ट में केवल मैं था, जैसे भगवान अभी कैसे बोल रहे हैं, भगवान एक आसेदम अग्रे के शुरू में खाली भगवान अकेले थे। तो जो मायावादी होते ना वो अलग अलग बताते हैं, अब कैसे बताते वो जरूरी नहीं समझना, लेकिन जो सही है वो समझना है कि यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, ना ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में समाहित थी, सब कुछ भगवान के अंदर ही था। अहम एक कम एक था, भगवान कहते हैं कि भगवान एक आसेदम अग्रे, अकेले थे भगवान। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया, क्या मतलब, आत्मात्मना विभु वो स्वामी हैं प्रत्येक जीव के, प्रत्येक लोक के, वे सूर्य गोलक के तुल्य हैं और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य हैं। वो सूर्य, भगवान सूर्य की तरह हैं और जितने भी किरणों के अंदर जो प्रकाश है उसके समान सारे जो जीव है वो है। अब देखो सूर्य कहाँ पर होता है, आसमान में होता है, और उसकी किरणें कहाँ पर होती हैं, वो भौतिक जगत में आती हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है। वासुदेवो वा इदम अग्रे आसीत न ब्रह्मा न च शंकर, एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा नेशानः। दो चीजें देखो बताई गई, वासुदेवो वा इदम अग्र, अग्र माना पहले सिर्फ वासुदेव भगवान श्री कृष्ण थे, न ब्रह्मा न च शंकर, न ब्रह्मा थे और ना ही शंकर थे। एको वै नारायण आसीन, एक ही नारायण वहां पर थे, न ब्रह्मा नेशान, ईशान कहते हैं शिव जी को, तो ना ब्रह्मा थे ना ईशान। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वैय रूप में विद्यमान रहते हैं। अकेले है भगवान, उसके अंदर से ही सब कुछ निकलता है। हमको आनंद करने के लिए अगर कोई वस्तु चाहिए तो वो हमारे अंदर से नहीं निकलती, बल्कि हमको बाहर से कुछ लेना पड़ता है, भौतिक जगत से, कोई व्यक्ति कोई वस्तु जिससे हम आनंदित हो सके, है ना। इसको मोबाइल चाहिए, किसी को LED चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को कंप्यूटर चाहिए, किसी को फ्रेंड्स चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड्स चाहिए, किसी को शराब चाहिए, तो किसी को कुछ और चाहिए। तो ये सब जिससे हम आनंदित होना चाहते हैं वो हमें बाह्य से प्रकृति से लेनी पड़ती है, परंतु भगवान को आनंदित होने के लिए किसी और वस्तु पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, भगवान के अंदर ही है ये सब। तो यहाँ चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत हुई है, वे सदैव अकेले अद्वैय रूप में विद्यमान है। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान है। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व ना तो कारण दक्षाय विष्णु थे, न गर्भो दक्षाय विष्णु, न क्षीरो दक्षाय विष्णु, या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्न अंश हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, आध्यात्मिक जगत था, गोलोक वृंदावन था, लेकिन भौतिक जगत नहीं था, किंतु भौतिक जगत में उनमें सुसुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता था तथा बिगड़ता, बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है। जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.7 में बताया गया है, भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है, और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहती। अब ये सब है ना, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति में यान्ति मामेका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि। हम कल्प के आरंभ में समस्त जीवों का प्राकट्य होता है, और दूसरे कल्प के, और कल्प का जब अंत होता है तो वो सब सुषुप्त अवस्था में भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, और फिर दूसरा कल्प जब निर्माण होता है तब उन सबकी वापस से जन्म लेता है। तो ये कैसे होगा उसको हम डिटेल से धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत उपकार। हरे कृष्ण।